हरे 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 कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देशभगवन, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं में छठे स्कंद में हंस गुह्य नाम की प्रार्थना है दक्ष प्रजापति भगवान को कर रहा है अपने अपराध की निवृत्ति के लिए। उसमें हम 30वें श्लोक को पढ़ेंगे। यस्मिन् यतो येन च यस्य यस्मै यद्यो यथा कुरुते कार्यते च परावरेषां परमं प्राक प्रसिद्धं तद्ब्रह्म तदाधे तदहेतोर अन्यद एकम्। इसमें 7 शब्द हैं। यस्मिन् जिसमें, यतो जिससे, येन जिसके द्वारा, च यस्य जो, यस्मै जिसमें, यद जो कुछ, और यथा अलग है, यथा कुरुते से लगेगा और कार्यते से, करता है और कराता है। तो ये इतने सारे विशेषण हैं। और पर अवर, पर का मतलब, अवर का मतलब नीचे के स्तर का, पर का मतलब ऊपर के स्तर का, उत्तर ऊपर या नीचे के स्तर का, अच्छा या बुरा। परमं प्राक प्रसिद्धम, ये पहले से प्रसिद्ध है, ये बात पहले से प्रसिद्ध है, ये प्राक है, ये ओरिजिनल है, ये असली है। कौन है वो? ब्रह्म है वो, परम परमं ब्रह्म, तद ब्रह्म तद हेतु, उसका और कोई हेतु नहीं है, अन्यत और कोई हेतु नहीं है, वो अकेला है। तो इस श्लोक का मैं पहले हिंदी अनुवाद श्रीपाद अपना श्रीधर स्वामी लिखते हैं। हे प्रभु, ये जगत जिसमें है यस्मिन, वो आप हैं। जिससे उत्पन्न हुआ है वो आप हैं। यस्मिन के बाद देखो क्या है, ये न, पहला यस्मिन, यतो, जिसके द्वारा निर्मित है ये न, वो भी आप ही हैं। जिसके लिए निर्मित है यस यस, हाँ यस्य, वो भी आप ही हैं। तथा जिसको ये इप्सतम है वो आप, वो भी आप हैं। इप्सतम क्या मकार्थ क्या होगा? इप्सतम, इप्सतम वो भी आप ही हैं। इसके कर्ता भी आप हैं, जो करने में स्वतंत्र हैं वो भी आप हैं। तथा इसके प्रयोज्य कर्ता भी आप ही हैं। आप ही ब्रह्म है, इस जगत के एकमात्र कारण आप हैं। आप इस संपूर्ण जगत, आप इस संपूर्ण जगत से पूर्ववर्ती रूप से प्रसिद्ध हैं। जगत से पहले ही आप, आपका अस्तित्व है। आप स्वगत भेद से रहित अद्वितीय और एक हैं। आप अकेले हैं और कोई नहीं है। और आप मुझ पर प्रसन्न हो। इनके प्रकाशिका भाव में जो इनका टीका है उसमें लिखते हैं, इस प्रकार से आत्मा का स्वरूप गुण स्वरूप नहीं है। इसका मतलब आत्मा प्रकृति के गुणों का नहीं है। इस प्रकार से स्वीकार करके अनिरुक्तात्मा शक्ति, जो पहले श्लोक में था, के द्वारा द्युतित सर्ववाच्य माया के ही होने का कारण आत्मा की विश्वरूपता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत के आश्रय ब्रह्म है। उनसे जगत उत्पन्न है और इस जगत का कारण साधक, साधकतम भी ब्रह्म है, ब्रह्म ही है। इस जगत के संप्रदान और कर्म ही, कर्म भी ब्रह्म है, ये जगत ब्रह्म का ही है। इस जगत के स्वतंत्र कर्ता और प्रयोजक कर्ता भी ब्रह्म है। इस श्लोक में सात यत शब्दों के द्वारा बताया गया है कि सातों विभक्तियां, विभक्तियों का अर्थ ब्रह्म ही है। यथा पद के द्वारा क्रिया तथा कार्य कारक के संबंध में वाचक अव्ययों का अर्थ को प्रदर्शित किया गया है। कुरुते तथा कार्यते इन दो पदों के द्वारा सर्वथा तथा स्वार्थ तथा पर अर्थ, अपने लिए तथा दूसरे के लिए क्रिया का सबको सबों के साथ संबंध दिखलाया गया है। च शब्द के द्वारा भाव कर्म में होने वाले प्रत्ययों के भी अर्थ का संग्रह किया गया है। यदि कोई कहे कि सब कुछ ब्रह्म है, ये कैसे कहा जा सकता है? इस पर कहते हैं कि उन सबों के कारण ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म सबों के पूर्ववर्ती रूप में प्रसिद्ध है। ननु इत्यादि कई कहे गए जगत के कारण तो ब्रह्म आदि है, ये सुना जाता है और देखा भी जाता है। अतएव ब्रह्म ही जगत के कारण है, ये कैसे कहा जा सकता है? इस पर कहते हैं कि ब्रह्म आदि अवर कोटि के हेतु, आदि अवर कोटि के हेतु हैं, उनके भी कारण ब्रह्म ही है। प्रश्न ये है कि यदि ब्रह्म सबों के कारण है तो फिर सहकारी कारण कौन है? क्योंकि इस समय ब्रह्म के भिन्न कोई दूसरा था ही नहीं, तो उसका उत्तर यह है कि ब्रह्म सहकारी के ब्रह्म सहकारी निरपेक्ष कारण है। वे ब्रह्म सजातीय विजातीयति भेद से रहित है। इस प्रकार के ब्रह्म को नमस्कार है, इस तरह से अगले श्लोक में अनव्य है। तो ये बहुत कहा जाए कि सांस्कृतिक कहा जाए या बहुत ज्ञानमय इसका भाव है। प्रभुपाद जी ने इसको बहुत सरल कर दिया है। परम ब्रह्म श्री कृष्ण है, जो सबका आश्रय है और सबका स्रोत है। सब कुछ उनके द्वारा किया जाता है और सब कुछ उन्हीं का है, और सब कुछ उन्हीं को अर्पण करना चाहिए। वो ही अंतिम विषय है, स्वयं करे या किसी से कराए, सब कार्यों के पीछे वही हेतु है, वही एकमात्र कर्ता है, अंतिम कर्ता। बहुत से कारण है, कोई ऊंचा कारण है, कोई नीचा कारण है, परंतु वो सारे कारणों के आदि कारण है, इसलिए उसको परम ब्रह्म कहते हैं। और वो ये जगत की क्रियाओं से पहले थे, वो एक हैं, दो हैं ही नहीं, और उनका कोई कारण नहीं है, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं ब्रह्म जो है वो परम कारण है, वो नित्य है, शाश्वत है, और जो छोटे बड़े कारण है उन सब का आदि कारण है। उनसे सब कुछ निकला है, उनमें सब कुछ है, उनके द्वारा सब कुछ है, ये सब कुछ उन्हीं से जगत जो है दिख रहा है। वो अकेले हैं और कोई नहीं है। अब प्रश्न उठाते हैं चक्रवर्ती पाद, अगर आप कहें कि ये भौतिक जगत भगवान का स्वरूप नहीं है तो फिर भगवान अधूरा है, तो ये कहां से आया भौतिक जगत? तो इसके लिए सात शब्द यस्मिन, यत, येन, यस्य, यस्मई, यत, यह, ये सब कह के ये कहा गया है जिस ये सारे के सारे भगवान ब्रह्म से ही संबंधित है, भगवान से अलग कुछ नहीं है, सभी भगवान से संबंधित है। जो ब्रह्म है सब कुछ करता है, उनसे सब कुछ निकलता है, उनमें सब कुछ रहता है, वो सब कुछ अंतिम करता है। ये सात जो शब्द हैं ये सब का सब संबंध परम ब्रह्म से है, भगवान से, जिसको श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण से सीधा कहा है। और जो यथा शब्द है उसका अर्थ है कि ये भगवान से जुड़ा हुआ है, और कुरुते और कार्यते जो है स्वयं करे या किसी के द्वारा कराए, ये सब कुछ ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि ये सब का कारण है। कैसे है वो? कि वो सदा से अस्तित्व उसका तो प्रकृति से पहले था, और जो नीचे स्तर की चीजें हैं वो किसी चीज का कारण दिख सकती हैं, परंतु ब्रह्म सब नीचे और ऊपर सब का आदि कारण है। आदि कारण ब्रह्म है, उनका कोई और सहायक है? ये श्रीधर स्वामी के तात्पर्य को वैसे का वैसे चक्रवर्ती पाद ने भाव में दिया है। नहीं, ब्रह्म अकेला है, एकम, सभी उसी के ऊपर आश्रित है। ऐसे कैसे कहा जा सकता है एक ब्रह्म ही सबका कारण है? हम तो जानते हैं कि काल भी कारण है, माया भी कारण है, जीव भी कारण है, कर्म भी कारण है। भाई, हमारा जन्म कर्मों के कारण होता है, और इच्छा जीव करता है। ये जगत माया के द्वारा सर्जित है, और समय इसके अंदर जो क्रिया को चालू करता है, तो ये सब तो कारण है ही ना। तो आप कैसे कहते हैं अकेला ब्रह्म कारण है? ये कारण क्यों नहीं है? इतना ये भी नहीं, नौ शक्तियां जिनका कल वर्णन किया था, विमला आदि, और तीन भगवान की अंतरंग शक्तियां सच्चिदानंद, संवित, सैंदनी और हलादिनी, वो भी तो कार्य करती है सारा। ये भगवान के सारे सहयोगी हैं, और फिर भगवान अकेले नहीं, भगवान विस्तार करते हैं, वसुदेव, संकृष्ण, और ये सारा कार्य उनके द्वारा सृष्टि कराते हैं, चतुर्व्यूह, और उसके बाद दूसरा चतुर्व्यूह, और फिर तीन विष्णु, ऐसे सारा कार्य तो भगवान करते हैं पुरुष अवतारों के द्वारा। कहते हैं ये सब भले कारण हो, ये सब के सब भगवान से अलग नहीं है। कुछ भगवान की शक्ति है, और कुछ स्वरूप शक्ति है भगवान की, और कुछ माया शक्ति है। जो वसुदेव, संकर्षण आदि है, ये भगवान के स्वांश है। काल, जीव, माया, ये भगवान की शक्तियां हैं, वो स्वरूप शक्ति से भिन्न है, परंतु है शक्तियां, इसलिए इनका कारण भगवान है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण आदि कारण है। भगवद गीता में ये सिद्ध किया गया है, अहम सर्वस्य प्रभव। प्रभव का मतलब है सबकी उत्पत्ति, सबका पालन संहार, वो सब मेरे द्वारा होता है। विशेष रूप से प्रभव का मतलब है उत्पत्ति। भले भौतिक जगत है जिसकी उत्पत्ति माया के द्वारा होती है, परंतु भगवान उसके पीछे निर्देशक है, उसके इशारे से होती है। इसलिए जगत के साथ भगवान का घनिष्ठ संबंध है, और भगवान अलग भी है जगत से, और जगत से जुड़े हुए हैं, जगत के अंदर अपनी शक्ति के द्वारा है, और जगत से अलग अपने धाम में, स्वरूप, अपने स्वरूप में है, परंतु घनिष्ठ संबंध है जगत के साथ। अगर ये भौतिक जगत भगवान के विराट स्वरूप का अंग नहीं है, तो फिर भगवान तो अधूरे हो जाएंगे। ये प्रश्न उठाया है चक्रवर्ती पाद ने कि ये जगत भगवान में नहीं है, भगवान का नहीं है, तो फिर भगवान अधूरे हैं। इसलिए हम ये प्रभुपाद जी एक और श्लोक देते हैं, इसलिए हम ये सुनते हैं भगवद गीता से, वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है। जो ये जानता है वो महात्मा दुर्लभ है, और ब्रह्म संहिता ने इसको तो बहुत स्पष्ट कर दिया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर तो बहुत है पर परंतु परम ईश्वर श्री कृष्ण है, उनका स्वरूप सचित आनंद विग्रह है, रूप है, वो आदि है अनादि है, जब कोई नहीं था तब थे, जब कोई नहीं रहेगा तब भी रहेंगे, उनका नाम गोविंद है, वो सारे कारणों के आदि कारण है। तो वो परम ब्रह्म सारे कारणों के आदि कारण है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, परंतु उनका कोई कारण नहीं है। गोविंद अपने आप को विस्तार करते हैं बहुत से रूपों में, परंतु फिर भी वो एक है। जैसे मध्वाचार्य कहते हैं, अनन्य सदृशा भावाद एको रूपाद्य अभेदतः। श्री कृष्ण के न कोई समान है न कोई महान है। जितने भी भगवान के विस्तार है वो उनके स्वांश है या विभिन्न अंश है, वो भगवान से अभिन्न है। अब 31वां श्लोक इस श्रृंखला का मतलब तीन श्लोकों का, जिसमें अंत में नमा आएगा जो तीनों के साथ लगेगा। यशक्त्यो वदतां वादिनां वै विवाद संवाद भवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मोह आत्ममोहम् तस्मै नमो अनंत गुणाय भूमने। अनंत गुणाय भूमने, हे अनंत गुणों वाले महान भगवान, इसलिए आपको नमस्कार है। इसमें तत्शक्तियों, जिसकी अनंत शक्तियां हैं, बोला कैसे पता लगा? वदताम वादिताम, वदताम मतलब वर्णन करते हैं, बोलते हैं कौन? वादिनाम, जो जो जिसका सिद्धांत है, कोई अद्वैतवादी है, कोई द्वैतवादी है, कोई स्वभाववादी है, कोई न्यायवादी है, कोई सांख्यवादी है। विवाद संवाद, कहीं कहीं तो आपस में झगड़ा करते हैं कि आप ठीक नहीं हो, आप ठीक नहीं हो, और कहीं कहते हैं नहीं ठीक हो, दोनों सही है। भो भवन्ति, कभी आपस में विवाद करते हैं और कभी संवाद करते हैं, कभी दोनों एक बात करते हैं, दोनों कभी एक दूसरे के विपरीत कहते हैं। ये कैसे होता है? कुर्वन्ति चैषां मोहर आत्म मोहम, ऐसे क्यों करते हैं? बोला वो सब आत्मा के विषय में मोहित हैं, उनको पता नहीं है पूरा आत्मा का। बोला क्यों? बोला ये आपकी माया ने उसको भ्रमित किया है। तस्मै नमो भगवान, इसलिए आपको नमस्कार करते हैं। इसमें भी हम श्रीधर स्वामी के भाव को पहले देखते हैं। श्रीधर स्वामी लिखते हैं, हे प्रभु आपकी ही शक्तियां वादी और प्रतिवादी के विवाद और संवाद के हेतु होती है। हे प्रभु, हे नाथ, आपकी ही शक्तियां वादी और प्रतिवादी के विवाद और संवाद के हेतु होते हैं, और उन सबों के बार बार मोह में ही भी डाल देती हैं, उन सबको बार बार मोह में भी डाल देती हैं। मुहूर, मुहूर मतलब बार बार मोह में डाल देती हैं। आप अप्राकृत दिव्य गुणों से युक्त, अनंत गुणों से युक्त हैं, अनंताय, तथा अनंत स्वरूप है, मैं आपको नमस्कार करता हूं। यदि इस प्रकार ब्रह्म के यदि इस प्रकार के ब्रह्म है तो फिर मीमांसिक विद्वान ये कहकर क्यों विवाद करते हैं कि ब्रह्म यदि ऐसा है तो जगत जो उसका कार्य है वो उस प्रकार का क्यों नहीं है? जैसा भगवान है ऐसा जगत क्यों नहीं है? ये मीमांसियों का तर्क है। उन सबों का दूसरे स्वभाववादियों के साथ एकात्म हो जाता है। उन जैसे दूसरे हैं वो सब कहते हैं ठीक, आप ठीक कह रहे हो। वे दोनों तत्व का प्रतिपादन करने वालों के द्वारा बोधित किए जानन पर भी पुनः मोहित कैसे हो जाते हैं। इतने सारे सिद्धांत हैं, इतने सारे दर्शन हैं, छह दर्शन तो हमारे सनातन धर्म में हैं, उन सब के होने के बाद भी लोग मोहित क्यों होते हैं। इस पर कहते हैं कि जिन पर ब्रह्म की माया की शक्ति कहीं पर विवाद की तथा कहीं पर संवाद की भूमि पर बन जाती है, तो माया ही ये सब कुछ कराती है, उस उन परम ब्रह्म को नमस्कार है। आप श्री प्रभुपाद जी के भाव को देखिए। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमको बड़े आदर पूर्वक प्रणाम करने दीजिए सर्वव्यापक महान विभुन्न भगवान को, जो अनंत गुणों के सागर हैं। वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, दर्शनों को जो दार्शनिक है, जो फिलासफर है, विद्वान है, उनके हृदय में बैठे हुए हैं, और उन्हीं के द्वारा अलग अलग मत का वाद भी करा रहे हैं, विवाद भी करा रहे हैं, प्रवचन भी करा रहे हैं और उनका खंडन भी करा रहे हैं। उनको भुला देते हैं, अपनी आत्मा के विषय में वो सब भूल जाते हैं, कभी आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हैं, बात को मान लेते हैं, और कभी एक दूसरे के विपरीत विवाद कर देते हैं। तो भगवान ही इस जगत में अपनी माया के द्वारा उनको मोहित कर देते हैं, इसलिए वो निर्णय पे नहीं पहुंच सकते हैं, विशेष रूप से आत्मा के विषय में उनका निर्णय नहीं हो पाता है, इसलिए हम भगवान को प्रणाम करते हैं। चक्रवर्ती बाद लिखते हैं, हम प्रणाम करते हैं महान भगवान को। उसके अनंत के दो अर्थ लिखे हैं, एक अनंत का अर्थ है अनगिनत, और दूसरा अनंत का अर्थ है जिसका अंत न हो। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं अनंत गुणों के स्वामी, जिसके गुण कभी समाप्त नहीं होते, एटर्नल क्वालिटीज, और उनकी माया शक्ति सबके वाद विवाद का कारण है, वाद प्रतिवाद का कारण है। वो कुछ अपना दर्शन करते हैं, फिर एक दूसरे से तर्क करते हैं, और भौतिक प्रकृति उनको भुला देती है, और वो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। चक्रवर्ती तो कहते हैं, दूसरे कोई सिद्धांत वाले आके ये कहते हैं कि आप ठीक नहीं हो, जैसे अद्वैतवादी हैं, वो कहते हैं भेद है ही नहीं, सब एक है। फिर न्याय वाले हैं, फिर द्वैतवादी है, जो कहते हैं भगवान 16 चीजें पहले सृष्टि करता है, वो 16 अलग अलग है, वो आपस में वाद विवाद करते हैं। फिर वैशाषिक है, और वो न्याय वालों से बात करते हैं कि आप ठीक नहीं हो। फिर मीमांसिक है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वो कहते हैं भगवान जैसा जगत नहीं है, भगवान से भिन्न जगत है। और फिर स्वभाववादी है, ये कौन है मालूम नहीं, वो उनसे तर्क कर वितर्क करते हैं, स्वभाववादी। स्वभाववादियों का मतलब जिसका जैसा स्वभाव है वैसी बात करेगा, जैसे जिसके स्वभाव में देवताओं की पूजा करनी है वो देवताओं की करेगा, ये इनके स्वभाव से आता है। बड़े बड़े विद्वान है फिर भी एक दूसरे को भ्रमित कर देते हैं, ये माया का काम है जो उनको विवाद में डाल देती है, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते हैं, और एक दूसरे के सिद्धांत का खंडन करते हैं। कारण बताया है, सदा ही वो आत्मा के विषय में विमोहित हैं, इसलिए तर्क वितर्क करते हैं। वो भले प्रयास भी करें जान नहीं सकते। हम उस अनंत भगवान को, जिसके गुण अमर हैं, अविनाशी हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान के गुणों का वर्णन भागवत में पृथ्वी देवी ने पहले स्कंद में किया है, एते चान्याये च भगवान नित्या यत्र महागुणा प्राथाय महत्वम इच्छदभिर्न वियन्ति स्म क्रचित। अनंत गुण भगवान में महान है और वो कभी भगवान को किसी समय छोड़ के नहीं जाते हैं। और ऐसा सुखदेव गोस्वामी भी एक श्लोक में कहते हैं, को नाम तृप्येत रस्वे रस वित्त कथायां ममात्मैकान्तः परायणस्य नानन्तं गुणानां अगौणस्य जुगमो जगमो योगेश्वराय भवपादं मुख्या। ये श्लोक चक्रवर्ती पाद ने उद्धृत किया है। वो कहते हैं, चक्रवर्ती पाद ने ये श्लोक लिख के कहा है, जो रस को जानने वाले हैं वो आपकी कथाओं से कभी तृप्त नहीं होते हैं। महान भक्तों के आप आश्रय हैं, आप योगेश्वर हैं, ब्रह्मा शंकर के भी अधिपति हैं, वो सब भी आपके गुणों के अंत को नहीं पा सकते हैं। और आपके गुण भौतिक प्रकृति से परे हैं। पराशर ने भगवान की परिभाषा दी है विष्णु पुराण में, ज्ञान शक्ति बलाश्वर्य वीर्य तेजांसी अशेषतः भगव शब्द वाचानि विना हे अयेर गुणाड़ी भी। जो भगवान शब्द है उसके अंदर पूर्ण ज्ञान है और सारी शक्ति है और बल है, क्रिया है, महिमा है, कोई भी अवर गुण नहीं। हे कहते हैं नीचे, कोई नीचे गुण नहीं है, सब उत्तम गुण है। बिना हे है, सब उपाधि है, कोई हे नहीं है। इन सब सिद्धांत, इन सब वर्णनों से भगवान के अनंत गुणों का यहाँ उल्लेख मिलता है। जो कहते हैं भगवान के ये गुण भौतिक है वो अपराधी है और वो ही निश्चित रूप से माया से मोहित है। श्री प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य लिखते हैं, अनादि काल से जब से ये सृष्टि हुई है तब से जीवों ने अलग अलग मत बनाए हैं और अलग अलग पंथ बनाए हैं, अलग अलग अपने दर्शन उन्होंने अपने मन से तर्क वितर्क करके बना के रखे हैं। परंतु जो वास्तव में भक्त है वो ऐसे नहीं करते। अब भक्त जो है वो भगवान की सृष्टि और पालन और संहार के विषय में अलग अलग वाद देते हैं, विचार देते हैं। एक वाद देते हैं और दूसरा प्रतिवाद, एक एक मत देता है, दूसरा उसके विपरीत खंडन करता है। महाभारत से प्रभुपाद ने एक श्लोक दिया है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतवयो विभिन्ना नासाव ऋषियस्य मतम न भिन्नम। आधा श्लोक है, इसके बाद श्लोक है, वह इसलिए महाजन ये न गंतर गता सपंथ। जितने भी मुनि हैं उन सब के अलग अलग मत है, वो दूसरे की मत का खंडन करते हैं, तर्क करते हैं, खंडन करते हैं। खंडन न करें तो मुनि ही नहीं कहलाएंगे। तो एक मत दूसरे से मिलता ही नहीं है, इसलिए महाजनों ने जो रास्ता बताया उसमें चलो, नहीं तो इन मत मतांतर में अटक गए तो कभी मंजिल नहीं मिलेगी। प्रभुपाद जी कहते दर्शन का अर्थ ही ये है, फिलॉसफी का अर्थ ही है कि अंतिम कारण को ढूंढना चाहिए कि वास्तव में आदि कारण क्या है। वेदांत सूत्र ने अच्छी बात कही है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आप ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करो। मानव जीवन जीवन तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए ही है। भक्त तो ये मान लेते हैं भगवान ही आदि कारण है और उसका प्रमाण भी वैदिक शास्त्र में मिलता है। स्वयं भगवान ही कहते हैं अहम सर्वस्य पर भव, मैं ही सबका उत्पत्ति का कारण हूं, तो उनको कोई खोज करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए कोई समस्या भी नहीं है। भक्तों के लिए और दार्शनिक अपने अपने विचार करते हैं, भक्त भगवान के विचार के ऊपर चलते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भारत में बहुत से दार्शनिक हैं, षड दर्शन है, द्वैतवाद है वो वैष्णव का है, अद्वैतवाद है शंकराचार्य का है, वैशिष्टिका है, ये वैशिष्टिका भी एक फिलॉसफी है, मीमांसा दो है उत्तर और पूर्व, मायावादी स्वभाववादी एक दूसरे के सब विरोधी। ऐसे ही पाश्चात्य देश में प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत से ऐसे दर्शन और फिलॉसफीज है सृष्टि के विषय में, जीवन के विषय में और पालन और संहार के विषय में। तो अनंत ऐसे दर्शन है पूरे विश्व में और एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं। तो कोई पूछ सकता है कि इतने सारे अलग मत क्यों, पंथ क्यों, दर्शन क्यों, जबकि सब दर्शनों का लक्ष्य भगवान है अथवा अंत आदि कारण को ढूंढना है, तो फिर इतने मत क्यों? ये तो सत्य है कि अंतिम कारण एक ही है, सभी उसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं, फिर क्यों आपस में लड़ रहे हैं? जब अर्जुन ने कहा है कि वही एक परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम दवाम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, तो अर्जुन ने जो कहा है परम ब्रह्म आप हो, परम धाम आप हो, पवित्र आप हो, परमम आप हो भवान, पुरुषम शाश्वतम सदा रहने वाले आप हो, दिव्य हो, आदि देव हो, अजन्मे हो, महान हो, विभु हो, तो ये कह दिया भगवान के सामने कहा, भगवान ने उसका समर्थन किया और कहा कि मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, व्यास असित देवल आदि दूसरे ऋषि भी कह रहे हैं आप सर्व कारण कारण हैं, तो फिर इतने सारे मत मतांतर और आपस में झगड़े करने की आवश्यकता क्या है? तो प्रभुपाद कहते अज्ञानी, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण विमोहित होते हैं। किस विषय में? आत्मा के विषय में और आत्मा के कार्य के विषय में। कोई तो आत्मा को मानते ही नहीं है, उसके विषय में पूरी जानकारी नहीं है और उसी आत्मा के विषय में ही मतभेद है। आदमी में आत्मा है, पशु में आत्मा नहीं है, ऐसे बहुत मानते हैं, इसलिए पशु को मार के खाने में कोई दोष नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है। और एक तरफ कहते हैं पशुओं के ऊपर अन्याय मत करो, क्रुएल्टी मत करो, कुत्ते के लिए छोटी जंजीर क्यों डाली है, खुला रखो इसको, और दूसरी तरफ गाय को मार के खा लो। तो ऐसे बने एक दूसरे के विपरीत मत वाले हैं। प्रभुपाद जी के उसका कारण एक बता रहे हैं, बहुत भारी कारण है, आप जरा इसको विचार कीजिए, प्रभुपाद जी क्या कारण बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कारण बता रहे हैं भगवान से ईर्ष्या, ये सब भगवान से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, भगवान को मिटाना चाहते हैं। और ऐसे सदा रहे हैं भगवान, भगवत गीता में ऐसे लोगों का वर्णन स्वयं करते हैं, तान हम द्वेषत क्रूराम, ऐसे द्वेषों को, ऐसे द्वेष करने वालों को जो मुझसे द्वेष ईर्ष्या करते हैं, संसारेषु नराधमाम, संसार में जो नराधम है मानव में सब नीच है, क्षिपामि अजरसम अशुभम आसुरिम एव योनिम, उनको बहुत समय तक मैं आसुरी योनियों में डाल देता हूं। आसुरी योनि मापना, आसुरी योनि में जाने के बाद मूढ़ा जन्मने जन्मी मूर्ख बार बार माम अप्राप्य एव कौनते, मुझे प्राप्त नहीं करता है, ततो यान्ति अधमाम गतिम, और नीचे जूनियों में चला जाता है। तो मुख्य कारण है भगवान से ईर्ष्या। प्रभुपाद कहते हैं ईर्ष्या के कारण भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए अभक्त जो है असुरी जूनियों में जन्म लेते हैं और वो बड़े अपराधी है, महा अपमान अपराधी है, और उनके अपराध के कारण भगवान उनको सदा ही विमोहित रखते हैं। मां भगवान की माया उनको भ्रमित कर देती है। कुर्वन्ति चैषां मोहरात्म मोहम, इस श्लोक का शब्द है। भगवान अपनी माया के द्वारा उन सबको आत्मा के विषय में अंधकार में रखते हैं। पराशर ऋषि ने भगवान का वर्णन किया है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ज्ञान शक्ति बलाईश्वर्य वीर्य तेजांसि अशेषतः भगव शब्द वाचाय वाच्यानि विना हे ऐर गुणादि भी। जो असुरी प्रवृत्ति के भगवान के द्वेषी है वो भगवान के द्वे गुणों की अनुभूति नहीं कर सकते, उनको जान नहीं सकते, नहीं भगवान के रूप लीला का और बल का, ज्ञान का, महिमा का, त्याग का, ऐसे जो छठ गुण है भगवान के, उनके विषय में उनका कोई विश्वास नहीं है। वो ये भी नहीं जानते हैं कि उनमें कोई भौतिक कलमश नहीं है, मिलावट नहीं है। विना हे यह गुण अदभी, विना हे ये उपाध्य, उपाध्य मतलब अच्छे, हे मतलब खराब, उनमें कोई खराबी नहीं है, कोई बुराई नहीं है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे तार्किक भगवान के द्वेषी है। जगत आहुर अनीश्वरम, वो कहते हैं इस जगत का कोई ईश्वर है ही नहीं। कोई इसका स्वामी नहीं है, कोई इसका संचालक नहीं है, अपने आप काम कर रहा है। इसलिए वो अज्ञान अंधकार में सदा के लिए रहते हैं। जन्म जन्म के बाद ऐसे ही उनकी स्थिति होती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं यही एकमात्र कारण है इतने सारे जत यत मत तत पंथ का, इतने सारे पंथ और मत हैं, उसका एकमात्र यही कारण है कि भगवान के द्वेषी है। अस्तीति नास्तीति च वस्तु निष्ठयोर एकस्तयोर भिन्न विरुद्ध धर्मोण विवेक्षितं किंचन योग सांख्यायो समं परमे अनुकूलं व्रतत्। एक विभाग कहता है अस्ति, हरे कृष्णा आइए आइए, एक विधा विभाग कहता है अस्ति है, दूसरा कहता है ना अस्ति नहीं है। अस्ति कहते हैं आस्तिक और नास्तिक कहते हैं नास्तिक, तो आस्तिक कहते हैं नास्तिक कहते हैं नहीं है। वस्तु निष्ठ बात एक ही की कर रहे हैं, जैसे कहते हैं कि नास्तिक किसको कहते हैं, तो परिभाषा यह है कि जो भगवान को न माने उसको नास्तिक कहते हैं। तो किसी को नास्तिक कहने के लिए भी भगवान की जरूरत तो है ना, बिना भगवान के तो नास्तिक नहीं हो सकता। तो दोनों का एचा वस्तु निष्ठयो, निष्ठा एक ही की है, एक कहता है भगवान नहीं है, एक कहता है भगवान है, लेकिन भगवान तो दोनों भगवान की बात कर रहे, तो दोनों की निष्ठा तो एक के ऊपर है। एक स्थयो भिन्ना, दृष्टि दोनों की अलग है लेकिन तत्व एक है। विरुद्ध धर्मयो, एक उसमें कहता है कोई गुण नहीं है, एक कहते सब गुण है। अवेक्षितम किंचम योग सांख्याम, एक भक्ति योग वाले हैं जो आस्तिक हैं और एक ज्ञान योग वाले सांख्या वाले हैं जो निषेध करते। समम परम ही अनुकूलम व्रत तत्, परंतु भगवान तो एक ही है जिसकी बात कर रहे हैं वो, समम एक ही बात है, परम वो परम की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं वास्तव में। अनुकूलम, अनुकूलम व्रत तत्, वो अंतिम कारण, दोनों अंतिम कारण की ही बात कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी भगवत गीता में बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, सांख्या वाले पेड़ की जड़ को ढूंढना चाहते हैं कि पेड़ कैसे खड़ा है, तो कहां ढूंढ के आ रहे हैं जड़ को, कहेंगे ये डाली तो, ये तो पेड़ इसके आधार पे नहीं है, पत्ते के आधार पे नहीं है, तने के आधार पे भी नहीं है, जड़ के आधार पे है। और भक्त क्या करते हैं, जड़ में पानी डालते हैं। तो दोनों का सेवा तो जड़ की ही कर रहे हैं, पहुंच तो जड़ के पास ही रहे हैं ना, तो दोनों का उद्देश्य तो एक है। प्रभुपाद जी लिखते हैं दो पक्ष जो हैं, एक नास्तिक और एक आस्तिक। जो आस्तिक हैं वो कहते हैं परमात्मा वो योग के द्वारा परमात्मा को सबका कारण ढूंढ लेते हैं, और जो सांख्या वाले हैं वो तो केवल भौतिक जगत का ही विश्लेषण करते हैं और क्या तत्व है, और अंत में पहुंचते हैं कि भगवान निराकार है। और क्या कारण है जगत का ये नहीं कहते कि भगवान का कारण जगत का कारण ब्रह्म है या परमात्मा है या भगवान है, कोई निर्णय नहीं कर पाते। बस वो तो केवल ऊपर ऊपर से भौतिक जगत के कार्य का वर्णन करते, परंतु दोनों का लक्ष्य तो परम सत्य ही है, उसी के विषय में एक दूसरे के विपरीत मत दे रहे हैं। दोनों परम ब्रह्म के का ही वर्णन कर रहे हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक, हम ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं वही एक भगवान है परम ब्रह्म, उसी की अनुभूति भक्ति के द्वारा और ज्ञान के द्वारा अस्ति और नास्ति दोनों के विचार से की जा सकती है। भले उनका साधन अलग हो परंतु लक्ष्य एक ही है। अब प्रश्न उठाते हैं चक्रवर्ती पाद कि इतने सारे दार्शनिक हैं, आप इनकी निंदा क्यों कर रहे हो कि ये आपस में झगड़ा करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, ये एक दूसरे से तर्क इसलिए करते हैं कि उनके विचार अलग हैं और विचार शास्त्र में लिखे हुए हैं, तो वो शास्त्र का ही तो मत दे रहे हैं, तो आप उनकी निंदा क्यों कर रहे हैं। कहते ये ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है, ये सत्य नहीं है। भक्ति भी और ज्ञान भी दोनों एक ब्रह्म को, व्रत को, व्रत मतलब महान, उसी को ढूंढ रहे हैं और उसमें कोई मतभेद नहीं है। दोनों शास्त्रों को अच्छी तरह देखो तो ये कोई मतभेद नहीं है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। बस एक कहता है नहीं है और एक कहता है नहीं है। भक्ति के शास्त्रों में लिखा है कि भगवान सांवले रूप का है, पीला पीतांबर पहनता है, कमल नयन है, चतुर्भुजा है, शंख चक्र गदा आदि धारण करते हैं। और ज्ञान के शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के न हाथ है न पांव है, न भगवान की आंख है न कान है, ये लिखा है ज्ञान के शास्त्रों में, उपनिषदों में। तो अब पर इन दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, एक उनके आध्यात्मिक गुणों का वर्णन कर रहे हैं और दूसरे उनके भौतिक गुणों का निषेध कर रहे हैं कि इसमें भौतिक गुण है ही नहीं। तो एक भौतिक गुणों का निषेध कर रहे हैं, एक आध्यात्मिक गुणों का प्रतिपादन कर रहे हैं, लेकिन विषय तो वही भगवान एक ही है। दोनों का लक्ष्य एक ब्रह्म है, तो फिर एक दूसरे में मतभेद क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जिन गुणों का वो वर्णन कर रहे हैं वो अपने विश्वास से कर रहे हैं, लेकिन विश्वास तो उसी भगवान के ऊपर है। जो भगवान के साकार स्वरूप का गुणों का वर्णन करते हैं वो भक्ति शास्त्र हैं, वो भी सत्य झूठ नहीं है। और जो ज्ञान शास्त्र में भगवान के गुणों का वर्णन है कि है नहीं, वो भी सत्य है, क्योंकि भगवान के कोई भौतिक गुण नहीं है। अब दोनों ये चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भले ये ज्ञान के शास्त्र वाले हैं, इनके शास्त्र में भी राम और कृष्ण का नाम है जो भक्ति शास्त्र में है, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। वो भले ब्रह्म का जिज्ञासा करते हो, भले निराकार का ध्यान करो, परंतु ये नाम तो उनके पास भी है। भौतिक नामों को निकाला है, दिव्य गुणों को नहीं। जैसे भक्ति के शास्त्रों में विराट रूप की उपासना भी नहीं की जा सकती है, उसकी ज्ञान में भी उपासना का वर्णन नहीं है। ये भागवत का श्लोक है, अमोने भगवत रूप मायाते अनुवर्णिते उभे अपी न गृणन्ति माया सृष्टे विपश्चिता। जो विपश्चित है, बुद्धिमान है, वो भगवान के दो रूपों को जिनका वर्णन किया है, मैंने किया है, भगवान कहते हैं वो भौतिक हैं। ये विराट रूप का वर्णन है दूसरे स्कंद भागवत में, 2:10-25 श्लोक है। सुबह पहले पहले आरंभ में नए जिज्ञासु को विराट रूप के ध्यान का वर्णन की सिखाया जाता है, जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो फिर भक्ति के मार्ग से उसको भगवान की सेवा में लगाया जाएगा। तो इसलिए भक्ति और ज्ञान के शास्त्र में कोई मतभेद नहीं है। जो निराकार है वही साकार है। जैसे आपके जेब में रुपया सिक्का है, रुपये का, तो उसके दोनों तरफ उसी के अंदर है, ऐसा नहीं एक तरफ अलग कर देंगे। एक ही भगवान के दोनों, वो एक ही भगवान है, दो नहीं है। और जो इसके विषय में झगड़ा करते हैं, मतभेद करते हैं, शास्त्रों का खंडन मंडन करते हैं, वो वास्तविक निर्णय को नहीं जानते, इसलिए वो निंदनीय है, झगड़ा करने वाले मूर्ख है। प्रभुपाद लिखते हैं, तर्क के दो पक्ष हैं, कुछ कहते हैं परम सत्य निराकार है, कुछ कहते हैं साकार है। परंतु दोनों में जो रूप शब्द है, एक कहते रूप है, एक कहते रूप नहीं है, परंतु रूप शब्द तो दोनों में है ही ना। तो एक अस्थि है, एक ना अस्थि है, अस्थि है आस्तिक और नास्ति है नास्तिक, आस्तिक है एक नास्तिक है। एक कहते हैं भगवान का आकार है, एक कहते हैं निराकार है। ये आपस में अनंत जन्मों तक आपस में भले तर्क वितर्क करते रहे। इस श्लोक में जो योग सांख्य शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। योग का अर्थ है भक्ति योग, वैसे योग है ही एक भक्ति, अन्य जितने योग के नाम है उस योग के मार्ग में पड़ाव है। कर्म योग पहला पड़ाव है, ज्ञान योग दूसरा पड़ाव है, ध्यान योग तीसरा पड़ाव है, परंतु योग की सीढ़ी तो भक्ति है, मंजिल तो भक्ति है, लक्ष्य तो भक्ति है। क्योंकि प्रभुपाद जी, क्योंकि योगी जो है वो भी सर्वव्यापक परमात्मा का चिंतन तो करते ही है और उसका दर्शन करना चाहते हैं अपने हृदय में। जैसे भागवत में लिखा है, ध्यानास्तित्तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशांत सुरासुर गुणा तस्मै। ये भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का श्लोक है। भगवान के बिल्कुल निकट सानिध्य में भक्त आना चाहते हैं और योगी जो है उसको परमात्मा के रूप में हृदय में देखना चाहते हैं। एक सप्रत्यक्ष है, एक अप्रत्यक्ष है। तो योग का अर्थ भक्ति योग है और सांख्या जो है वो है ज्ञान। उसमें भौतिक जगत का विश्लेषण किया जा सकता है कि जाता है, इसको ज्ञान शास्त्र कहते हैं। इनका लक्ष्य जो है निराकार ब्रह्म है, परंतु जो परम सत्य है उसके तो तीनों नाम है, ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है और भगवान भी है। तो परम सत्य तो एक ही है, एक उसको ब्रह्म कहते हैं, दूसरे उसको परमात्मा कहते हैं, तीसरे उसको भगवान कहते हैं, परंतु सभी एक ही विषय का वर्णन कर रहे हैं, वो है परम सत्य। भले ये निराकार साकारवादी आपस में झगड़ा करते रहे और करते रहते हैं कुंभ मेलों में, ये जो वैरागी है ये सब साकारवादी हैं और सन्यासी निराकारवादी है, इनके बीच में बड़े झगड़े होते रहते हैं। वो एक ही भगवान है। आइए आइए, खुला है, खुलो है। हरे कृष्णा, एक मिनट, ओ श्री राधे। एक और डब्बा था, वो नहीं लाया
क्या?
प्रभुपाद जी के लिखते हैं, दो निराकारवादी हो या साकारवादी हो, उन दोनों का लक्ष्य पर ब्रह्म है। और योग शास्त्र में लिखा है, भक्ति योग में, कृष्णम पिशंग पिशांगाम्बरम कृष्ण वर्णम। ये जो जो हमने पढ़ा था चक्रवर्ती पाद, वो श्लोक ये है। कृष्ण मतलब सांवला, पिशांगाम्बरम मतलब पीला पीतांबर पहनता है, अंबुजाक्षणम कमल नयन है, चतुर्भुजम चार हाथ हैं, शंख गदा आदि आयुधम शंख चक्र। ये उसी श्लोक का प्रभुपाद ने संस्कृत दिया है। हाँ, तो सांख्या जो दर्शन है वो भगवान के दिव्य रूप का खंडन करता है। वो कहते भगवान के हाथ पांव नहीं है। हाय अनाम रूपा, हाय अनाम रूप गुण पाणि पादम अचक्षुर अश्रोत्रम एकम अद्वितीयम अपि नाम रूपाधिकम नास्ति। ये है ज्ञान शास्त्र का वर्णन। उसके न है हाथ, न है पांव, न है कान, न है आंख। प्रभुपाद जी कभी कहते हैं यही कोई भगवान की प्रार्थना है कि अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, ऐसी थोड़ी प्रार्थना होती है भगवान की। परंतु प्रभुपाद जी लिखते हैं इसका मतलब है, वास्तव में इसका अर्थ यह है कि उनके भौतिक नहीं है इंद्रियां। भगवान अप्राकृत है, प्राकृत इंद्रियां नहीं है, उनका सच्चिदानंद विग्रह है। और सांख्या वाले और ज्ञान वाले और सन्यासी तीनों एक ही बात है, वो भगवान के भौतिक रूप का खंडन कर रहे और भक्त भगवान के आध्यात्मिक रूप का पूजन कर रहे। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। यहां पूरा करते हैं, यहां से आगे पढ़ेंगे कल। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा कोई जिज्ञासा वो आपका पट्टी आया है
प्रभु जी
मैं बांधूंगा फिर अभी कल सुबह हरे कृष्णा बोलिए
प्रभु जी मैं दो दिन पहले आपसे कर नहीं पाया मेरी वाइफ की बर्थडे थी बर्थडे
तो बर्थडे थी हैप्पी बर्थडे ना
जी हाँ जी
हरे कृष्णा चलो जी
मेरी वाइफ आपको हरे कृष्णा बोलना चाहती थी
ओ हरे कृष्णा हमारा हैप्पी बर्थडे उनको बोल देना भाई हरे कृष्णा जियो हजारों साल
कृष्ण प्रभु जी
हरे कृष्णा रुको रुको
हरे कृष्ण प्रभु जी जो हम प्रवचन सुनते हैं ना
हाँ जी
वो उसका कुछ कुछ भाग मेरी वाइफ भी सुनती रहती है स्पीकर पे चला होता है
अच्छा वो ना अरे भाई वो आधा आंगे आप वो नहीं भी सुने तो आधा पुण्य तो उसको मिलेगा ही वो तो मुफ्त में आधा कमा रही है जी
जी जी जी, जी।
और खुद अगर सुनेगी तो आधा अपना मिलेगा आधा आपका मिलेगा उनको तो डबल फायदा होगा
जी प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी
बहुत अच्छा बहुत अच्छा हरे कृष्ण
प्रभु जी की
धन्यवाद
की।